तप कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।
ओम शांति। हम सभी होली हंस ज्ञान सागर के, परम पवित्र परमात्मा ज्ञान सागर के होली हंस ज्ञान रत्नों में सदा पलने वाले और अनेक आत्माओं को पालने वाले आदरणीय राजू भ्राता जी का हम दिल से एक हाथ की ताली के द्वारा अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय भ्राता जी, विगत 60 वर्षों से प्यारे बाबा के ज्ञान रत्नों को चुन रहे हैं और हंस बनकर मोतियों को एकत्रित करके हम सब ब्रह्मावत्सों तक भी विश्व भर में बांटने का कार्य करते हैं। आप पिछले 50 वर्षों से अपना अलौकिक विश्व सेवा के लिए समर्पित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपने साकार मम्मा बाबा को इन भौतिक चक्षुओं से, आंतरिक चक्षुओं से भरपूर उनका आनंद और सुख प्राप्त किया है। आप 1976 से आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी के सानिध्य से मुरलियों से प्रश्न उत्तर, स्लोगन, वरदान और धारणा का सार निकालने का, दीदी से आपको ये वरदान प्राप्त हुआ और 1976 से आप मुरलियों की ये सेवा विश्वव्यापी कर रहे हैं। आप फोटोकॉपी डिपार्टमेंट, जो हमारे यज्ञ का पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और शांतिवन में है, तीनों ही परिसर के फोटोकॉपी डिपार्टमेंट, आदरणीय दादियों के पर्सनल ऑफिस का कार्य आपको ही सौभाग्य प्राप्त है और आपके ही द्वारा पत्र पुष्प पत्रिका आदरणीय दादी जी की आपके हस्तों से ही लिखी जाती है, चुने जाते हैं ज्ञान रत्न। आप विश्व भर में आपने अपनी सेवाएं दी हैं, लाखों लाख आत्माओं को आपने राजयोगी बनाया है। आप राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के रूरल डेवलपमेंट विंग के आप वाइस चेयरपर्सन हैं। ऐसी महान ज्ञानी, योगी, ज्ञानमूर्त, धारणामूर्त भ्राता जी को अपने बीच पाकर हम आह्लादित अनुभव कर रहे हैं और भ्राता जी से विनम्र निवेदन है कि आज का विषय आत्मिक शुद्धि के लिए तपस्या विषय पर हमें मार्गदर्शन करें आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। बाबा के इस तपस्वी भूमि पर तपस्या करने का बहुत सुंदर गोल्डन चांस आप सभी ने लिया है। प्रकृति भी आपका स्वागत कर रही है। सूक्ष्म वतन में जाने की जरूरत नहीं है, मधुबन ही सूक्ष्म वतन बना हुआ है, ऐसा है। और भाग्य विधाता ने आपके हाथों में भाग्य की कलम भी दे दी। आज की मुरली के अनुसार आप सब ने भगवान और भाग्य दो शब्दों को तो याद किया होगा। कितना श्रेष्ठ भाग्य वर्षे के रूप में, वरदान के रूप में, सहयोग के रूप में, साथ के रूप में हम सबको प्राप्त हुआ है। स्वयं भगवान का साथ मिले, सहयोग मिले, उसका वर्षा मिल जाए, उससे सब वरदान मिले, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा सारे कल्प में। नशा चढ़ता है कि नहीं? चढ़ता है ना। इतना श्रेष्ठ भाग्य भाग्य विधाता ने हमारे हाथों में दे दिया। और फिर कहता है अगर 84 जन्मों की भाग्य की रेखा खींचनी है तो कलम मैं दे देता हूँ, खींच लो अपने हाथ। है सबके पास कलम की नहीं है? सबको मिल गई है ना। तो श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ कर्म ही कलम है। जितने श्रेष्ठ कर्म बाबा की याद में रह करके जो कर्म किए जाएं वो सब श्रेष्ठ कर्म हो जाते हैं। कर्म करने के बाद कोई कर्तापन का नशा ना आए कि मैंने किया है। बाबा को समर्पित कर दो तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा। तो आज बाबा ने आप सबको बहुत प्यार से भगवान और भाग्य की रेखा खींचने की कलम दे दी। तपस्या के लिए आप आए हैं और हम सब जानते हैं कि आत्मा की शुद्धि का आधार, आत्मा को संपूर्ण सत्व प्रधान बनाने के लिए तपस्या है। लेकिन ये तपस्या कोई हठ क्रियाएं नहीं है, कोई एक टांग पर खड़ा होना, आसन लगाना, प्राणायाम करना, जो भक्ति काल के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने तप किया, या कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या की, उसमें हठ क्रियाओं का बहुत प्रयोग किया है। ऐसा ऐसा हठ किया है, कहते हैं वाल्मीकि ने ऐसी तपस्या की जो उसके शरीर पर चारों तरफ से दीमक ने घर बना लिया, बाल बना लिए इतने छोटे छोटे। इतनी कठिन तपस्या की तब भगवान को प्रसन्न कर पाया। और जब भगवान प्रसन्न हो गए तो वरदान दिया कि एक ऋषि बन गया हो। कहां डाकू था, कहां वो ऋषि बन गया। तो परिवर्तन का आधार, शुद्धि का आधार तपस्या है। लेकिन बाबा ने भगवान को प्रसन्न करने की विधि ये नहीं बताई है कि हठ क्रियाएं करो। तपस्या माना ही दृढ़ता संपन्न संकल्प। जो संकल्प करो उसमें इतनी दृढ़ता हो, एक बाबा दूसरा न कोई, संकल्प में भी कोई देहधारी की तरफ बुद्धि का लगाव झुकाव न हो, ऐसी तपस्या चाहिए। केवल बैठ करके योग करने की बात नहीं है, लेकिन बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चों की जीवन ही तपस्वी जीवन हो। एक दो घंटा, चार घंटा, दो चार दिन, छह दिन बैठ गए, खाना पीना छोड़ दिया, हठ क्रिया किया, समाधि ले ली, वो तपस्या नहीं है। बाबा ने तो हम सबको बहुत सरल सहज योगी जीवन दी है, इसमें किसी भी प्रकार की मेहनत और मुश्किल नहीं है, बहुत सहज योगी जीवन है। और इस योगी जीवन के अंदर जितना हम नियम संयम पालन करते उतना ये जीवन तपस्वी जीवन कहलाती है। तो बाबा ने साकार में इस स्थान पर खुद तपस्या की, इसलिए आप सब देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा की तपस्या में जो शक्ति थी, जिसके वाइब्रेशन इस स्थान पर है। एक बार यहाँ पर संत सम्मेलन रखा गया था, बहुत सारे संत यहाँ आए थे, हरिद्वार से, बनारस से, अलग अलग स्थानों से कई बार यहाँ संतों के सम्मेलन हुए। जो पवित्र आत्माएं होती हैं उनको बहुत जल्दी कैच होता है कि इस पवित्र स्थान पर बहुत शक्तिशाली वायुमंडल है, कुछ शक्तियां अपने आप में इमर्ज होती हैं। तो इस स्थान पर जब वो ये जो शांति स्तंभ से कुटिया का स्थान है, जब ये बाउंड्री ऐसे क्रॉस किया तो उन संतों का एक ओपिनियन रहा कि इधर और इधर दोनों स्थानों में बहुत बड़ा अंतर है। ये स्थान एक बहुत पावरफुल रेखा है, ऊर्जा है, कोई शक्ति है यहाँ पर। उनको क्या पता कि निराकार शिव परमात्मा और उसका साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा जिस स्थान पर रहे, जहां पर पैदल किया है, जहां विश्व कल्याण के लिए चिंतन किया है, तपस्या की है, ऐसी तपस्या स्थली का वायुमंडल कैसा होगा। योग लगाने की जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ आए हैं, अनुभव कर रहे होंगे, बाबा के घर में स्वतः योग, सहज योग लग जाता है। ये गीत है ना, कण कण से तेरी याद आती है। अब जिन्होंने इसका अनुभव पहले नहीं किया है, कई तो पहली बार ही आए होंगे, पांडव भवन में रहने का चांस भी कईयों को पहली बार मिला होगा, ऐसा है ना। अभी 3-4 दिन में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करना। अब यहाँ बाई मुक्ता तो है ही नहीं, कोई बातें संसार समाचार, कोई भी इधर उधर के सेंटर्स के समाचार, उनसे तो सब फ्री ही है, मुक्त है ना। तो मुक्त रह करके मुझ आत्मा को संपूर्ण पावन, स्वच्छ, पवित्र, निर्मल बन करके यहाँ से जाना है। जो भी ऐसी कोई अशुद्धियां हैं, त्रुटियां हैं, कमी कमजोरियां हैं, वैसे भी जब मन एकाग्र हो जाता है तो एकाग्रता के आधार से अपने अंदर की बातों का अनुभव होने लगता है। जैसे स्थूल में भी आपने देखा होगा, जब पानी स्थिर हो जाता, पहले एकाग्र होता है, इकट्ठा होता है, और एकाग्रता के साथ साथ जब स्थिर हो जाता है तो उसमें जो धूल कण मिट्टी मिक्स होती है वो सब धीरे धीरे जमीन में चली जाती है। उसके बाद वो पानी कांच जैसा साफ स्वच्छ हो जाता है, और उसके अंदर अगर 100 फुट 200 फुट गहराई भी है तो कोई छोटी सी चीज, एक 10 पैसे का सिक्का भी अगर उसके नीचे डाल दो तो ऊपर से दिखाई देता है बहुत बड़ा है। इतना स्पष्टता में, स्वच्छता में इतनी स्पष्टता आ जाती है। तो इस स्थान पर अगर आप एकांत में एकाग्र चित्त हो जाएंगे तो आत्मा जो है जैसी है, और हमारा बाबा जो है जैसा है। तो कहता है मुझे कोटों में कोई, कोई में भी कोई विरला ही पहचान पाता है। हैं इतने सब हम बच्चे, लाखों में हो गए अभी, लेकिन पहचानने में अभी भी नंबर वार है। यथार्थ पहचान में क्या होगा, बाबा उसकी शक्तियां, अगर सचमुच किसी ने पहचान लिया तो एक बार बाबा ने कहा था वो तो एकदम परवाना फिदा हो जाएगा। स्वयं भगवान का एक कार्य, उसके हम सब बच्चे, और वो शक्तियां इस स्थान पर व्याप्त हैं। तो इस स्थान का क्या महत्व है, बाबा का क्या महत्व है, उसको स्पष्ट जान लेना, उसकी शक्तियों को पहचान लेना। लेकिन उसके लिए बाबा कहता है मैं आत्मा जो हूं जैसी हूं, क्योंकि कई ऐसी सूक्ष्म कमी कमजोरी होती है जो लौकिक जीवन में उसका हम समझते हैं शान है, कमी कमजोरी नहीं, वो शान है, ऐसा तो रहना ही होगा। जैसे एक सूक्ष्म संस्कार, विशेष करके आप सब हरियाणा से कौन कौन आए हैं, हरियाणा से ही हैं सब, हरियाणा की एक बात सुनाता हूँ। वैसे तो हरि का आना है, भगवान वहीं शायद आए हैं, लेकिन एक बार हमने एक सम्मेलन रखा ग्राम विकास का, और सम्मेलन में एक प्रधान को बुलाया। मैंने कहा ये प्रधान और कहां हमारे प्रोग्राम में बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े पोस्ट वाले, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर आते हैं। लेकिन वो प्रधान भी इतना अहंकार में था, इतना रोबदार था, जो मेरी तरफ देखा भी नहीं उसने। बहनें बता रही हैं माउंट आबू से भाई आए, एकदम ऐसे पूरा टाइम स्टेज पर ऐसे बैठा जैसे मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। अब उसको लगता है कि ये हमारी शान है, हम प्रधान हैं गांव के, क्या कम बात है। लेकिन एक जो नम्रता, सरलता, मधुरता, मिलनसारिता, ये जो दिव्य गुण हैं, ये सूक्ष्म रोब के अंदर, अहम के अंदर समाप्त हो जाते हैं। अब ये संस्कारों को रियलाइज करना, कितनी बड़ी पद पोजीशन पोस्ट, कितनी बड़ी कोई कार्य व्यवहार हो, जितने बड़े लोग होते जाते हैं उतने नम्र हो जाते हैं। और बाबा भी कहता है जो भरपूर होता है वो झुक जाता है। आज पेड़ भी अगर फल से भरपूर हो जाता है तो उसकी डालियां झुक जाती हैं। अब इस सूक्ष्म संस्कार को एक आत्मा रियलाइज करे कि इन संस्कारों से कितना नुकसान हो रहा है, कितने टकराव की स्थितियां पैदा होती हैं, कितना लोग दूर हो जाते हैं, कितनी प्राप्तियों से आत्मा वंचित हो जाती है। है छोटा सा संस्कार रोब का, रोब ही कहेंगे ना, अहंकार भी नहीं दिखाता है, कोई ये नहीं कहता मैं हूं कुछ, लेकिन एक रोबदार। तो ऐसी बहुत सारी अशुद्धियां आत्मा के अंदर आ गई। शरीर मिला, पद पोजीशन मिला, धन दौलत मिली, परिवार मिले, प्राप्तियां हुई हैं, इन प्राप्तियों का एक उल्टा नशा, उसका एक सूक्ष्म अभिमान, और अभिमान के कारण अगर छोटा सा भी कोई अपशब्द या अपमान कर दे, उसको रिस्पेक्ट न दिया जाए, उसको उसी तरह की सीट न दी जाए, स्थान न दिया जाए, क्या होगा, कितना उसको फीलिंग आ जाएगी, और ऐसी फीलिंग आएगी जो दोबारा बुलाने जाओगे तो आपको डंडा लेके भगाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं इस समाज में। एक बार हमारे यहाँ एक संतों का जब सम्मेलन रखा गया ना, तो हमारे भ्राता जी जगदीश भाई थे, बहुत ध्यान रखते थे एक एक चीज का, वही मैनेजमेंट के सब करते थे। तो जब बुलाया गया तो एक एक चीज के लिए उन्होंने बहुत ध्यान दिया, इनको कहाँ बिठाएंगे, क्या खिलाएंगे, कैसे हर एक की पोजिशन के अनुसार आसन देंगे, बहुत प्रयास किया उनको, सौगातें कैसे होंगी, क्योंकि हर एक चीज का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो कोई कोई फीलिंग आ सकती है। तो ये ओम शांति भवन बन गया था, वहां पर स्टेज बनाई गई, स्टेज के ऊपर एक स्टेज बनाई गई लकड़ी की, पट्टों की, कि हर एक को आसन पर बिठाएंगे, नीचे नहीं बिठाएंगे। लेकिन एक जगत गुरु होगा, इतना परिचय नहीं था, वो श्री श्री 1008 लगाते हैं ना वो, और डंडे वाले थे, डंडा वाला भी था, तो थोड़ा सा किसी उसके पदवी अनुसार उसका कोई एक नीचे वाला कोई को ऊपर आसन थोड़ा मिल गया, और उसको थोड़ा नीचे मिला बैठने के लिए, नाम लगे थे चिटकी, बस उसने देखा उसका नाम ऊपर मेरा नीचे है, और इतना अंदर से चिढ़ गया, गुस्सा हो गया, जो कुछ बोला नहीं लेकिन अपना डंडा उठाया और भागा वहां से स्टेज से, और भाग करके तुरंत आकर के सुखधाम में रखा था, सुखधाम में दरवाजा बंद कर लिया। जगदीश भाई बड़े परखे थे कि ये नाराज होके गया है, कुछ भी कारण हो, बोला कुछ नहीं है लेकिन गुस्से में गया है, नहीं तो ऐसे कौन भागेगा स्टेज से, सबको बिठाया जा रहा है, सम्मान से बहनें बिठा रही हैं। अब वो जब भाग गया, दरवाजा बंद कर लिया, तो जगदीश भाई भी पीछे पीछे भागे कि देखें क्या हुआ है, क्यों ऐसे गया है। उन्होंने दरवाजा खोला, महात्मा जी महात्मा जी, तो अहंकार में गुस्से में नहीं खोला दरवाजा। अब नहीं खोला तो उनको लगा कि एक व्यक्ति भी नाराज हो गया तुम्हारी कॉन्फ्रेंस फेल हो जाएगी। तो वो दादी के पास आए, बड़ी दादी को बोला, दादी को सुनाया, दादी ऐसे ऐसे लगता है उसको बहुत फीलिंग आई है, कोई कारण होगा पता नहीं चल रहा है लेकिन भाग के गया है। दादी कहती चलो मैं चलती हूँ। अब दादी तो माँ है, तो दादी आई उसके दरवाजे को, बोला भैया, महात्मा जी ने बोला भैया खोलो दादी आई है, दादी आपसे मिलना चाहती है, भैया खोलो। अब वो पिघल गया, इसी शब्द से पिघल गया कि दादी खुद इनकी संस्था की हेड आई है, संस्था बाहर निकला, महात्मा जी सॉरी, आपको कुछ फीलिंग कुछ फील हुआ है, गलती कोई हुई हो तो माफ कर दो। अब क्या करेगा, पिघल गया इतने में, इसी शब्द में पिघल गया, कहता नहीं नहीं दादी कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा आप लोग बिठाने पर ध्यान दो, हमारे अंडर जो हैं उनको आपने ऊपर बिठाया मेरे उन्हें, अरे अच्छा महात्मा जी गलती हुई, चलो फिर ले आए उसको थोड़ा आसन ऊपर दे दिया, बैठ गया करके, बस दादी जी के कहने से झुक गया वो, आया और बैठा के स्टेज पर, तो सारा प्रोग्राम पूरा हो गया। उसके बाद एक भूतपूर्व शंकराचार्य जी थे, शंकराचार्य जी ने जब लास्ट में भाषण किया, उनको भी पता चल गया होगा कुछ हुआ है स्टेज पर, हलचल तो हो जाती है, तो उन्होंने भाषण करते करते क्या बोला, कहते हैं एक पंछी कौवा होता है, वो जो कौवा होता है ना, वो पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर ही बैठना पसंद करता है, नीचे की डाली में नहीं बैठना चाहता है। वो नीचे की डाली पर नहीं बैठना चाहता, उसको सबसे ऊंची चोटी चाहिए। तो हमारे समाज में भी कई ऐसे लोग हैं जिनको ऊंची चोटी के सिवाय बैठना नहीं आता है। अब वो तो भूतपूर्व था, शंकराचार्य पदवी वाला भी था, तो सबको पता चल गया कि कुछ हुआ है। लेकिन मेरा ये कहने का भाव है कि अशुद्धि कहां से आई, उसका मूल कारण क्या है। कितनी भी तपस्या कर लो, कितने भी योग लगा लो, अगर इस प्रकार का कोई भी अहंकार है, जोश है, लोभ है, मोह है, अहंकार, उसके बहुत सारे बाल बच्चे हैं। ये अशुद्धियां यही है ना, और क्या अशुद्धि आई आत्मा में। और इन अशुद्धियों को समाप्त करने के लिए लोग पानी में, गंगा में नहा रहे हैं, इधर कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, साधन अपना रहे हैं, नहीं शुद्ध हो रहे हैं। शुद्धता के लिए बहुत प्यूरिटी की हाईएस्ट स्टेज को प्राप्त करने के लिए जो परम पवित्र है उसके साथ संग चाहिए। कहते हैं संग का रंग लगता है। पारस के साथ लोहा मिल जाता है तो भी सोना बन जाता है। तो हम सबका ही जो तपस्या है वो है उस पारस मणि परमात्मा के साथ कनेक्ट होने का, उसको टच करने का, उसके साथ रहने का, उसके संग के रंग में रहने का, ये तपस्या है। और जितना समय आत्मा परमात्मा के संग में रहेगी बुद्धि बल से, चलते फिरते, खाते पीते, कर्म करते, सिर्फ बैठ करके नहीं, संग में रहने से उसके संग का रंग आत्मा पर लग जाएगा। आत्मा शुद्ध पवित्र बनती जाएगी, उसके विचार श्रेष्ठ बनते जाएंगे। हम सबकी वर्तमान समय कंप्लेन है, सभी ब्राह्मणों जिनसे मिलो व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, इनको कैसे जीता जाए। विकल्प बुरे संकल्प, नेगेटिव संकल्प कहते, इनको तो हम मार मार के खत्म कर दिया, नहीं आने देते। लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, जो देख लेते चल जाते, रुकते ही नहीं। अब इसके लिए कोई दूसरी दवाई तो नहीं है, लेकिन संकल्प का काम है सारा कल्प चलना, वो तो चलेगा ही, लेकिन उस संकल्प को मोड़ने की शक्ति चाहिए। न दबाना है न मारना है, सिर्फ मोड़ दो। हैंडल अच्छा होगा तो मोड़ा जा सकेगा, टाइट होगा तो मुड़ेगा भी नहीं। हर परिस्थिति में अपनी संकल्पों की गति को मोड़ने की जरूरत है। दो शक्तियां आत्मा के पास जरूरी हैं। वैसे भी गाड़ी चलाने वाले जानते हैं, कहीं भी गाड़ी चलने के पहले वो चेक करते हैं इसकी ब्रेक पावरफुल है। ब्रेक हमेशा नहीं लगाई जाती, ब्रेक जहां एक्सीडेंट होने वाला या जहां कोई ऐसी बातें होती वहां पर लगा के गाड़ी स्लो किया, ब्रेक लगाई, फिर मोड़ दिया और अपनी मंजिल की ओर चल दिए। तो मोड़ने की शक्ति और ब्रेक देने की शक्ति, तपस्वी आत्मा के पास ये दो शक्तियां बहुत जरूरी हैं। तपस्या अगर करनी है, संकल्प चल गया, कोई कारण से कोई बात मेरे किसी ने बोल दिया, कुछ हो गया, अब संकल्प चलने लगे, ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये बड़े होकर के भी, ज्ञानी होकर के भी, समझदार होकर के भी ऐसे व्यवहार करते हैं, ऐसे बातें करते हैं, अब संकल्प की क्यों लग गई। अब बैठो योग में, लगेगा योग, कहेंगे क्या करूं, बहुत व्यर्थ संकल्प, माथा भारी हो जाता है। अब इन व्यर्थ संकल्पों को मोड़ना पड़ेगा, इसमें भी कुछ कल्याण होगा, इसमें भी सीख जाएंगे, इससे भी आगे बढ़ जाएंगे, ये भी हमारी उन्नति की बातें हैं। संकल्प मोड़ दिया, भाई बात आई है, खत्म हो जाएगी, कोई सदा तो नहीं रहती, ये भी भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाऊंगा, कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। तो जिसने बिंदी लगा दी, कल्याणकारी ड्रामा की बिंदी, कई लोग ड्रामा के ज्ञान में भी इतने उलझे हुए हैं, कहते हैं बाबा तो कहता है बना बनाया है, जब बना बनाया तो पुरुषार्थ क्यों करूं। अब इसमें कितना बाबा कहता है डनलप का तकिया लगा करके बैठ जाते हैं, अरे बना बनाया तो है, लेकिन बनाया है तब तो बना है, ऐसे बन गया क्या। अब बनाने की बात को भूल गया, बना बनाया याद रहता है। कुछ श्रेष्ठ कर्म किए हैं तब तो श्रेष्ठ प्रारब्ध बनी है, सिर्फ प्रारब्ध हमें मिल जाएगी बिना श्रेष्ठ कर्म के। तो ड्रामा में दोनों चीजें ऊंधी हुई है, इसलिए यथार्थ ड्रामा को समझ करके कल्याणकारी बात की बिंदी लगा देना, हर बात में, हर सीन में, जो भी परीक्षाएं आती हैं, परीक्षाएं तो हरेक के सामने आ रही हैं, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे संबंध के द्वारा, चाहे धन दौलत आर्थिक रूप की, हर प्रकार से कोई न कोई के आगे पेपर आते हैं। और जब ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो नए नए पेपर आना शुरू हो जाते हैं, अलौकिक से भी आते हैं तो लौकिक से भी आते हैं, कहते हैं तो पता नहीं क्या हो गया। और बाबा कहता है जब वैद्य दवाई देता है ना तो अंदर की बीमारी बाहर आ जाती है, और जब बाहर आती है तो घबरा जाते हैं, फिर कहेंगे चलो इसको दबा दो, इंग्लिश की दवाई ले लो, खत्म कर दो, कहीं और नुकसान न कर दे। तो बाबा कहते हैं कि बाप बच्चों की अंदर की बातों को जब बाहर प्रकट कर देता, निकलने लगती बीमारियां, तो घबरा जाते हैं। अब इतने ऊंचे लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, पढ़ाई का, तपस्या का, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ऐसे डायरेक्ट ब्राह्मण फरिश्ता देवता नहीं बनेंगे। संगम युग पर हम सबकी पढ़ाई का मूल लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना, और पहले पक्के ब्राह्मण तो बन जाएं, हमारा बोलना चलना खाना पीना रहना, उसके अंदर जितनी प्योरिटी और रॉयल्टी आती जाएगी उतना वो पक्का ब्राह्मण बनता जाएगा। जितना वो स्वच्छ है, साफ है, अंदर बाहर एक है, निर्मल है, सरल चित है, उतना वो स्वच्छ ब्राह्मण है। और ब्राह्मण पक्का है तो नेचुरल है फरिश्ता बनेगा ही, डबल लाइट हो जाएगा, कोई बोझ नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई चिंता नहीं। सबसे बड़ा बोझ कौन सा है भाई, कौन सा बोझ है बोलो भाई लोग, अवज्ञाओं का बोझ, बहुत सूक्ष्म छोटी छोटी अवज्ञाएं हो जाती हैं, और अवज्ञाओं के बोझ वाली आत्मा कभी उड़ती कला का अनुभव नहीं कर पाती। कुछ न कुछ बोझ ब्राह्मण बनने के बाद सूक्ष्म अवज्ञाएं होती हैं। बहुत ध्यान रखते हैं आज्ञाओं के ऊपर, कि बाबा ने कहा है बच्चे अमृत वेले उठना है उठ जाते हैं, मुरली क्लास में जाना है चले जाते हैं, शुद्धन खाना है खा लेते हैं, अच्छा संग करना है कर रहे हैं, ये सब आज्ञाएं ऊपर से सब पालन करते, फिर भी योग नहीं लगता, बैठते हैं तुरंत नींद आ जाती, भटकने लगती बुद्धि इधर से उधर, कारण सूक्ष्म अवज्ञाओं का बोझ। इस बात को बहुत अंडरलाइन करना, कोई चलो बड़ी आयु वाला है, कोई बीमारी है, कोई शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, दवाइयां ले रहा है, नींद की गोली ले रहा है, उसको नींद आएगी जब योग में बैठेगा, उसके लिए तो चलो ठीक है फायदा हो रहा है, लेकिन जब संगठन में हम योग कर रहे हैं और ऐसी कोई लहरें बन रही हैं, भाई साहब आप लोग सब मोबाइल अपने बंद कर दो नहीं तुम्हारा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, सब बंद करो पहले मोबाइल, साइलेंस नहीं बिल्कुल स्विच ऑफ करो, जो बार बार बज रहा है कईयों का। तो ये जो सूक्ष्म अवज्ञाएं हैं जिससे दूसरों के संकल्प चल जाएं, क्यों कर रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे का योग तोड़ दिया, बैठे हम भी योग में हैं, नियम पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारे कारण दूसरे के संकल्प चल रहे हैं, तो ये भी तो एक अवज्ञा हो गई ना, बोझ हो गया ना। तो किसी भी कर्म से अगर कोई आत्मा को हम परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपनी आदतों से हो रहा है उसकी बात अलग है, आदतें तो हरेक की अपनी अपनी हैं। नहीं रुकते हैं फोन, बंद करा दो भाई, कोई को नहीं पता चलता ना कैसे बंद करूं। तो कई प्रकार की आदतें तो एक व्यक्ति की हैं, कभी रियलाइज किया कि मेरी आदतें कौन सी हैं और आदतें बनी कैसे, यही अस्वच्छता है जिसको हमें शुद्ध करना है, क्योंकि ब्राह्मण आत्माओं में कोई भी शूद्रपन की, माना पिछले जन्म की, पिछला जन्म ही शूद्र का है, शूद्र माना वो नहीं जाति वाली बात कर रहा हूं मैं, लेकिन जब तक हम सच्चे ब्राह्मण बने नहीं हैं तब तक कोई न कोई शूद्रपन की आदत है, चाहे बोलने में है, चाहे खाने में है, चाहे चलने फिरने में है, चाहे हर एक एक्टिविटी से हमारी दिखाई देती है, तो इसकी आदत है। मान लो दो लोग बात कर रहे हैं, तीसरा आकर के कान लगा के सुनने लगता है वो क्या बातें कर रहे हैं, या चार पांच लोगों के कोई बातें चल रही हैं, वो आएगा फट से अपनी राय दे देगा बीच में, उसकी आदत है वो, कुछ न कुछ चलते फिरते टोक देगा, बोल देगा, चलते फिरते खा लेगा, जब आएगा जब कुछ न कुछ खाता रहेगा, कोई कोई जलते फिरते थूकता रहेगा, बात बात में कट करना, ऐसे कुछ करना, ऐसी कई आदतें छोटी छोटी हैं और वास्तव में वो सब अशुद्धियां हैं। और वो आई हैं कोई न कोई अपने लौकिक परिवार से, घरों में जिस प्रकार की पालना मिली, जिस प्रकार का संग मिला, जिस प्रकार का खान पान मिला, जहां की संगत में हम उठे बैठे रहे हैं, समाज में चाहते नहीं थे लेकिन उनके संग का रंग लगता गया। और वो सब बॉडी कॉन्शियस की देन है, देह अभिमान की देन है। अब इन अशुद्धियों को हमें समाप्त करना, बहुत रॉयल संस्कार बनाने हैं। ब्राह्मण आत्माएं जिनकी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी प्योरिटी की है, पवित्रता की है, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारे संकल्प, हमारे संस्कार एकदम सरल प्योर शुद्ध हो जाए, कांच जैसे, आत्मा सामने आए और स्पष्ट अनुभव हो ये कैसी आत्मा है। आप अनुभव करेंगे जो ऐसे अभिमान वाले, ऐसे रोब वाले, ऐसे अहंकारी लोग, पतित लोग होते हैं ना, उनकी वाइब्रेशन भी लोगों को टच होते हैं, बाजू से क्रॉस करेंगे ना, आप बोलेंगे कुछ नहीं तो भी लगेगा यार ठीक नहीं व्यक्ति लगता है। और कोई कोई व्यक्ति सामने आएंगे तो ऐसे लगेगा बहुत रॉयल संस्कार है, उसके वाइब्रेशन बड़े अच्छे हैं, पहचान नहीं है उसके वाइब्रेशन से वो व्यक्ति को कैच कर लेते हैं। तो हम सब ब्राह्मण आत्माएं जितनी पवित्र शुद्ध दयाल बनती जाएंगी, हमारे संस्कारों से, हमारे बोल से, हमारे कर्म से, हमारे व्यवहार से, हर आत्मा को अपनेपन की फीलिंग आएगी। जैसे हम ब्रह्मा बाबा को कहते मेरा बाबा, दादी को कहते थे दादी मेरी दादी, मेरेपन की एक हरेक को फीलिंग आई, चाहे ज्ञानी आए चाहे अज्ञानी आए, जो यहां रहे सब सब ने अनुभव किया कि मेरी दादी, मेरा बाबा, बाबा ने हम सबको इतना प्यार दिया, इतनी पालना दी, इतना अच्छी तरह से बच्चे बच्चे कह के पढ़ाया, तो अपनेपन की फीलिंग दी। कभी भी कोई नेगेटिव बात देखी तो उसको दिल पर नहीं रखी, संभालिया, समाप्त कर दिया, बच्चे हैं, निर्दोष हैं, ठीक हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, बहुत ऊंची भावना रखी, कल्याण की भावना रखी, इसलिए बाबा के प्रति हरेक के अंदर रिस्पेक्ट रहा कि मेरा बाबा है। हम सबको भी बाबा यही कहते हैं। आत्मा इतनी शुद्ध इतनी पवित्र बन जाए जो उसके वाइब्रेशन से अपनेपन की फीलिंग आने लगे, ये अपने हैं, इनको कोई बात कहो कोई भी बात सुना दो, कहीं भी फैलाएंगे नहीं, कहीं बात को बड़ा नहीं करेंगे, हमें कोई अच्छी राय देंगे, ये हमारे शुभ चिंतक हैं। तो वो शुद्धता के लिए, ऐसी पवित्रता के लिए, रियल गोल्ड बनाने के लिए ब्रेक पावरफुल करो, जहां पर भी कोई व्यर्थ संकल्प आए उसको मोड़ दो, न देखना है न सुनना है न सोचना है न बोलना है। पांच स्लोगन, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, बाबा ने दो ऐड किए, थिंक नो इविल और डू नो इविल। इविल क्या है? देह को देखना, देह के बारे में सोचना, देह के बारे में चिंतन करना, उसी के संबंध में वार्तालाप में आना, ये सब इविल है। बाबा ने हमारे संस्कारों में सिविलाइज्ड संस्कार बनाने के लिए आत्मा को देखने का अभ्यास कराया है। जब किसी से बात करते हो, जब किसी से मिलते हो, तो भ्रकुटी में चमकते हुए सितारे को देख के बोलो, ये मणि कितनी अच्छी है, कितना चमकदार है। शरीर को नहीं देखो, काला है पीला है सुंदर है नहीं सुंदर है, अगर उसका चिंतन कर रहे हैं, माना बॉडी कॉन्शियस में है, आत्मा में मैल जमा हुआ है, तो उस मैल को समाप्त करना, देह अभिमान की मैल को समाप्त करने के लिए आत्म अभिमानी स्थिति की तपस्या चाहिए। त्याग है देह अभिमान का और तपस्या है आत्म अभिमानी स्थिति बनाने की। कुछ भी कर रहे हो, आप सवेरे उठते हो, कैसे अभ्यास करते हैं हम, सवेरे सवेरे उठे अनुभव करते हैं कि आत्मा परमधाम से इस शरीर में अभी अभी प्रवेश हो रही है, मैंने ये शरीर धारण किया है, मैं बच्चा हूं, शिव बाबा ने इस सृष्टि मंच पर पार्ट बजाने के लिए मुझ आत्मा को ये तन दिया है, पार्ट प्ले करें, हम अवतार हैं, अवतरित हुई आत्मा है। फिर कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए यही भान रहे कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म करा रही हूं। ये अगर अभ्यास कर लिया ना तो यही सबसे बड़ी तपस्या है। आत्म अभिमानी स्टेज जितनी हमारी बनती जाएगी, देह अभिमान खत्म हो जाएगा, अशुद्धियां अपने आप निकलती जाएंगी। सारी अशुद्धियों की जड़ देह अभिमान है। द्वापर युग से ये अशुद्धियां बढ़ी हैं, 84 जन्म में धीरे धीरे गिरावट हुई, लेकिन वहां फिर भी आत्म अभिमानी स्टेज सतयुग और त्रेता के अंदर रही, बॉडी कॉन्शियस नहीं था, लेकिन बॉडी का संग जात था और संग का रंग लगते लगते जब द्वापर युग शुरू हुआ तो आत्मा अपने आप को भूल गई, सब कुछ समझ लिया यही मैं हूं शरीर, और देह मान के कारण ही काम क्रोध लोभ मोहंकार सब विकार आए, पूरा झाड़ बन गया विकारों का, और गिरते गिरते आज ये हालत हो गई है जो हर आत्मा विकारों में ग्रस्त विकारी बन गई, पतित बन गई, मलेच्छ बन गई। और अब बाबा उसको थोड़े समय में बिल्कुल प्योर शुद्ध कंचन बनाना चाहता है। अब उसके लिए करो तपस्या। तपस्या के सिवाय और कोई साधन नहीं है आत्मा को शुद्ध बनाने का। और तपस्या कोई एक दो घंटे बैठ करके, ऐसे आंख बंद करके, कान बंद करके, हट करके, आसन लगा के नहीं बैठना। आसन जरूर है, बिना आसन के हम तपस्या नहीं करते, लेकिन हमारा आसन है भ्रकुटी, ये गुफा। इस गुफा रूपी भ्रकुटी आसन पर बैठकर आत्म अभिमानी स्टेज का अभ्यास कर लो। और दूसरा आसन एक देते हैं तपस्वी आत्मा को, वृक्ष के नीचे। वृक्ष के नीचे बैठकर के तपस्या करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हम सबको बाबा ने कल्प वृक्ष के नीचे बिठाया है, तने में बिठाया है। हमारा जो चित्र है कल्प वृक्ष के, उसमें देखा होगा तने के अंदर, आज भी बाबा ने उसको थोड़ा सा लिया चार लाइन, फिर चेंज कर दी मुरली, कि बीज के साथ आप बच्चे बैठ करके तपस्या कर रहे हो। पूरे वृक्ष को शक्ति आप तने से प्राप्त हो रही है। अब इस बात को समझना, इतना बड़ा वृक्ष, पट वृक्ष क्या कहें, इतना बड़ा वृक्ष बन गया है मानव सृष्टि का, कितने धर्म, कितनी शाखाएं, कितनी उपशाखाएं, कितना विस्तार हो गया है। अब उन सब की जड़ों में बैठी हुई मैं तपस्वी आत्मा हूं। नॉलेजफुल बन करके पूरे वृक्ष को इमर्ज करो और ऐसे शक्ति की सकाश दो कि पूरे वृक्ष को सब को शांति की, पवित्रता की, शुद्धता की शक्ति प्राप्त हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको मात पिता के सदा संग रह करके तपस्या करनी, अकेले नहीं करनी है। ब्रह्मा बाबा एक तरफ बैठे हैं, उनको हम कहते हैं कपल मुनि, और उनकी बेटी का नाम है कामधेनु मां। लोग तो कहते हैं कपल मुनि थे, उनके पास एक गाय थी जो कामधेनु थी। उस कामधेनु गाय के पास जाने से उनकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती थी। सब कामनाएं जो भी हो कामधेनु के दर्शन से पूरी हो जाती थी। अब हमारी कामधेनु मां जगत अम्बा है, और कपल मुनि, कपल माना जोड़ा है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का कंबाइंड रूप है। अब इन दोनों के साथ हम बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। बुद्धि में नॉलेज है कि सारा वृक्ष जिसके हम सब पूर्वज हैं, लौकिक में भी कोई पूर्वज होते हैं, बड़े घर के होते हैं, उनको ये ध्यान रहता है जो कर्म हम करेंगे, जो हम संकल्प करेंगे, जो हम बोलेंगे, वो सारा परिवार, सारी वंशावली फॉलो करेगी। इसलिए ये स्मृति जब रहती है कि हम इस ब्राह्मण कुल की पूर्वज आत्माएं हैं, पूरे वृक्ष की जड़ों में बैठी हुई तपस्वी आत्माएं हैं, तो हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए, हमारे वाइब्रेशन कैसे होने चाहिए, हमारी वृत्तियां, हमारी स्मृति, हमारे संकल्प, हमारे बोल, अगर इन सब बातों पर हमारा ध्यान है तो माना हमारा तपस्वी जीवन है, और उस तपस्वी जीवन के आधार से पूरे वृक्ष को शक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए आसन बाबा ने दिए हैं, और ये बड़े सूक्ष्म आसन है, आसनी कोई स्थान को बना करके बैठने की भी जरूरत नहीं। ये तो हम सबको बाबा प्रैक्टिस कराता है कि सहज निरंतर योगी बनने के लिए कुछ समय बैठ करके तपस्या करो, कुछ समय बैठ जाओ और ऐसे एकाग्रता का अभ्यास करो जो इतनी स्वच्छता और स्पष्टता आ जाए, अपने आप को देख सको और जो कमी कमजोरियां हैं उनको रियलाइज करके परिवर्तन कर सको। कई बार कई ब्राह्मण आत्माएं अपनी चेकिंग कर लेती हैं, समझ जाती हैं ये विकार, ये बुराई, ये संस्कार मेरा ठीक नहीं है, ये हमारे ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ी रुकावट डाल रहा है, लेकिन चेक करने के बाद चेंज करने की शक्ति नहीं है, चेंज नहीं कर पाते और कभी कभी तो निराश, उदास, हताश हो जाते हैं, क्या करूं ऐसे संस्कार हैं, इनको विकारों को जीतना, इन संस्कारों को जीतना बहुत बड़ी बात है। बाबा कहता है बच्चे कभी भी दिल छोटी नहीं करो, बाबा बहुत बड़ा है, सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है, आप बाबा के संग में रहने का अनुभव करो। अगर योग नहीं लगता है तो भी ये नहीं को योग नहीं लगता है, बाबा के कमरे में जाओ, बाबा को बोलो मेरा योग नहीं लगता है, मैं आपको देखता रहूं बस, देख तो सकते हैं ना, उसके लिए तो कोई मना नहीं करता है, बस बाबा कहता है नजर से नजर मिला लो, ये नजर तो मिलेगी लेकिन अंदर की नजर मिल जाए कि मैं आत्मा और परमात्मा शिव बाबा के साथ मिलन मना रही हूं, यही योग है। बाकी चिंतन करते 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 कोई देखूं कोई चीज, कोई झिलमिल देखूं, कुछ ये देखूं, बाबा कहता देखने की चीज नहीं है, लेकिन जितना आप अपने आप को मन को एकाग्र करके अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित होंगे, मैं आत्मा हूं ये मेरा बाबा है, तो दृष्टि से दृष्टि भी मिल जाएगी। तो बाबा कहता नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, अपने आप निहाल हो जाओगे, जो आत्मा बेहाल है, पतित है, अशुद्ध है, वो शुद्ध बनती जाएगी, तो संग का रंग लग जाएगा। इसलिए जितना समय हो सके संग के रंग में रहने का अभ्यास करो, बाबा के रंग में रंग जाए आत्मा। तो इसलिए जब भी समय मिले ना बाबा के कमरे में चले जाओ। बाबा का कमरा तो सबने अपने अपने घरों में बनाया है ना, नहीं बनाया है? किसने किसने बनाया माता, हाथ उठाओ। अच्छा, सबने बनाया है, भाइयों के घरों में भी है, साथ होंगे ना, युगल युगल आए। केवल दो या तीन नियम पालन कर लो, आपका जीवन तपस्वी जीवन बन जाएगा। एक, अमृत वेले उठते ही बाबा से पहले नंबर में मुझे गुड मॉर्निंग करनी है, दूसरी कारोबार बाद में, कोई व्यक्ति को नहीं देखना है, कोई कार्य व्यवहार में तुरंत नहीं लगना है, आंख खुलते ही बाबा सामने आए बस। किस रूप में आएगा? निराकार रूप में तो आता ही है, निराकार को सहज याद कर सकते, लेकिन वो निराकार साकार ब्रह्मा के तन में आकर के मेरे को दृष्टि दे रहा है, आंखें तो उन्हीं की यूज करेगा ना। तो इसलिए बाप दादा सामने आए और उसकी शक्ति और सकास लो, लाइट और माइट से संपन्न हो जाओ। फिर बाबा के कमरे में बैठ करके बाबा मैं तुझे देखता रहूं, और कुछ नहीं देखना है, मैं बाबा तुझे देखता रहूं, बाबा को ऐसी दृष्टि में ऐसे देखो जो बाबा जैसे आपको दृष्टि से उड़ा करके अपने साथ ले जाए। कहता ना मैं पलकों पर बिठा के ले जाता हूं, पलकों में बैठना तो सहज नहीं है, आत्मिक स्थिति में स्थित होते ही अनुभव होगा कि आत्मा उड़ करके बाबा के पास जा रही है। जितना समय आप एकाग्र होकर के बैठ सकते हो बहुत प्यार से, योग नहीं लगता, योग नहीं लगता नहीं, अच्छे अच्छे गीत बजाओ, अच्छा वातावरण बनाओ, अच्छे संकल्प करो और बहुत प्यार से बाबा को देखते रहो, ये अमृत वेला अच्छा हो जाएगा। और फिर मुरली क्लास में तो जाते ही होंगे सभी नियम पूर्वक, कई लोग आजकल की माया के अधीन हो गए, वो माया आ गई है मोबाइल, कहते हमारे घर में मुरली आ जाती है ना, मैं मुरली डायरेक्ट मधुबन के सुन लेता हूं, कहेंगे हमारे घर में पीस ऑफ माइंड पर सारी मुरलियां आती हैं, मुझे जरूरत नहीं सेंटर में जाने की। बाबा कहता है ये कनेक्शन कट कर रही है माया, ध्यान देना, जहां से हमको शक्तियों का स्रोत प्राप्त हो रहा है, जहां परमात्मा की डायरेक्ट करेंट है, शक्तियां हैं, पवित्र बहने हैं, उस स्थान को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। शक्ति कहाँ से मिलेगी? मुरली सुन लेना, पढ़ लेना, यही सिर्फ पर्याप्त नहीं है। अच्छे संग, अच्छे वातावरण की जरूरत है। इसलिए संग और वातावरण के लिए सेवा स्थान पर जाकर के कम से कम ये पक्का करो, एक बार तो सेवा स्थान पर 24 घंटे में मुझे जाना ही है। अमृत भी ले जा सकते हैं सवेरे के समय तो बहुत अच्छा है। दूसरा एक नियम बना लो कि जो कुछ हम खाएंगे बाबा को जरूर भोग लगाएंगे, बहुत शुद्धता के। पहले नंबर में कोई दूसरा उस पर आंख न डाले, दृष्टि न पड़े किसी की, बड़े शुद्धता से, बड़ी पवित्रता से, सफाई से सब कुछ साफ स्वच्छ करके। नहीं तो बाबा को भोग लगाओगे तो पता क्या होगा। एक बार एक संदेशी यहां भोग लगाने गई, ऐसे जो आंख उसकी बंद हुई फट से वापस आ गई, कहती है आज तो भोग में क्या रखा है, उसने देखा नहीं था भोग क्या है, भोग बनाने वाले दूसरे, लाने वाले दूसरे, संदेशी तो ऐसे चली गई भोग लगाने। तो जब गई वापस आई तो कहती है आज तो बाबा ने इसमें सांप दिखा दिया, कुछ है क्या कीड़े एड़े? तो कहती नहीं नहीं बहुत सफाई से बनाया, बड़ी स्वच्छता से बनाया, कुछ नहीं इसके अंदर। कहती कुछ तो होगा, बाबा वापस स्वीकार करने के बजाय मुझे वापस भेज दिया। तो जब भोग खुला, उस जिसने बनाया था वो आए सामने, देखा तो उसमें एक बाल था। बनाने वाले सब बनाते हैं जब बहने, कभी कभी बाल झड़ते हैं, कोई छोटा सा बाल गिर गया होगा। अब बाबा ने उस बाल को सांप दिखा दिया कि देखो बच्ची भगवान को भोग लगा रही हो, ये भी अशुद्धि है, ये भी शुद्धता होनी चाहिए। तो इतनी शुद्धता से, बहुत पवित्र विचारों से, पवित्र मन से बाबा का भोग बनाओ और बाबा को खिलाओ, और फिर थोड़े भोग को ही बाबा के आगे खिला करके सारे भोग भोजन में मिला दो। फिर जो खाएगा ना उसका तन मन शुद्ध हो जाएगा। ये भी आपकी मार्क्स जो है ना तपस्या में गिनती हो जाएंगे। शुद्धता का आधार तपस्या है ना, तो ये तपस्या भोजन की शुद्धता द्वारा मन को शुद्ध बना देना वो माताओं के हाथ में है, बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। कोई भी विकारी, कोई तूफान आता है, कर्मेंद्रियां चंचल होती हैं, कभी किसी भी प्रकार से कोई परेशान कर रहा है, बाबा कहता है तुम्हारे पास सबको मैंने जादू मंत्र दिया है। वो तंत्र मंत्र वाला नहीं जादू मंत्र है, लेकिन शुद्ध अन्न, बहुत पवित्र विचारों से बनाया हुआ अन्न खाओ और सबको खिलाओ, उसकी बुद्धि अपने आप शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे साधन बाबा ने बताए हैं आत्म शुद्धि के लिए, और वो आत्म शुद्धि की जितनी विधियां अपनाते हैं उसको तपस्या ही कहा जाता है। तो हम सब तपस्वी आत्माएं हैं, आत्म अभिमानी बनने की तपस्या करें, अपने स्वरूप को देखें, जो मेरे अंदर कमी कमजोरी संस्कार ऐसे हैं जो इस ब्राह्मण जीवन को फरिश्ता बनने में रुकावट डाल रहे हैं, मुझे उन्हें समाप्त करना है। दृढ़ता से संकल्प करके परिवर्तन कर लो, दृढ़ता संपन्न संकल्प ही तपस्या है, एक बाबा के प्यार में समाना ही तपस्या है, एक बाबा से सर्व प्राप्तियां करना ही तपस्या है, एक से सर्व संबंध रखना ही तपस्या है। तो हम सब तपस्वी आत्माएं जो भी कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य यही है, हम आत्मा बिल्कुल जैसी थी, जैसी परमधाम में थी और जैसी इस सृष्टि पर अवतरित हुई पहले पहले, कब? शतयुग के अंदर, अनादि और आदि स्वरूप को सन्मुख में रख करके मुझे रेस करनी है और उसी लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये हमारा तपस्या का लक्ष्य है, गोल हमारे सामने है कि आत्मा जब इस सृष्टि मंच पर आई थी, न देह का बंधन, न संबंधों का बंधन, न कोई पारिवारिक बंधन, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं, प्रकृति संपूर्ण पावन सतो प्रधान और आत्मा एकदम सर्व कलाओं से संपन्न, ऐसी स्टेज को प्राप्त करने के लिए मुझे तपस्या करनी है। ये करता है ऐसे देखना नहीं, मुझे करना है और मुझे बन करके दिखाना है। तो दृढ़ता संपन्न संकल्प करोगे तो सब कमजोरियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति।
ओम शांति। आप सबकी आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए भ्राता जी ने बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म अशुद्धि, जिन्हें हम अशुद्धि समझ भी नहीं रहे थे, उनकी तरफ हमारा ध्यान केंद्रित किया और महसूस किया कि यदि इस प्रकार की जीवनचर्या से अशुद्धि, हमारी देह भान जनित सूक्ष्म अशुद्धियां निकल जाती हैं, तो तपस्या को करना सहज हो जाएगा। तो ऐसी सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्ञान रत्न जो हमें भ्राता जी ने दिए हैं, उनके धन्यवाद के लिए हम एक हाथ की ताली बजाते हैं। ताली का भी मौन है, इसलिए एक हाथ की ताली, और दूसरा हाथ उठाकर हम भ्राता जी को आश्वस्त भी करते हैं कि आपने जो एक एक्सपेरिमेंट अपने जीवन में करके इन सूक्ष्म अशुद्धियों को योग तपस्या, ज्ञान तपस्या से तप कर जो निकाला है, और आपकी जो मस्तक मणि सतो प्रधान स्वरूप में चमक रही है, मैं आत्मा भी अपनी आत्मा को ऐसी ही सतो प्रधान अनादि आदि स्वरूप में बनाने की प्रक्रिया में जारी हूँ और अब तीव्र इस प्रक्रिया में जुड़ूंगी। जो ऐसा संकल्प करते हैं वो भी एक हाथ उठा करके भ्राता जी को आश्वस्त कीजिए कि मुझे अपने ब्राह्मण जीवन को शूद्रपन से मुक्त, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनाना ही है। इस दृढ़ता संपन्न संकल्प को मैं लेकर जा रही हूँ। ओम शांति।